हेलो बच्चों, मेरा नाम प्राची गोयल है। मैं एमए इकोनॉमिक्स कर रही हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी से। आज हम 10th क्लास का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। अब इसे समझने के लिए कि आर्थिक अवधारणाएं क्या होती है, आर्थिक चीज़ें क्या होती हैं, उसमें क्या क्या नियोजन करने होते हैं, उसमें हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब इसको वर्ड को अगर हम अलग अलग करें तो इसमें दो वर्ड्स आते हैं, राष्ट्रीय और आय। पहले हम आय की बात करते हैं। आय शब्द आपने दिन प्रतिदिन हर बार सुना होगा। आय का मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो हम उसे कहेंगे इनकम। अब ये जो इनकम होती है, ये जो आय होती है, ये क्या होती है? हम जब अपना कोई भी काम ऐसा करते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं और हम अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, हम अपने मनपसंद चीज़ें खरीदते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और अपनी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उसे पूरा करते हैं, उसे बोलते हैं आय या फिर इनकम। हम सबको पता है कि हमारे जीवन में जो आय है, ये जो इनकम है, इसका कितना बड़ा महत्व होता है। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि हमें कुछ भी चीज़ अब खरीदनी है, हमें कुछ भी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, तो हमें हमारे पास आय होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। हालांकि सिर्फ ये जो इनकम होती है, जो ये आय होती है, यही हमारे लिए जीवन में ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन ये हमारे जीवन का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। जितनी ज़्यादा एक व्यक्ति के पास या एक परिवार के पास आय होगी, उतनी ही ज़्यादा वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेगा। उसका जो सामाजिक इंटरेक्शन है, उसका जो सोशल इंटरेक्शन है, वो जो लोगों से बात करता है, वो भी उसका ज़्यादा होगा। उसका खुद का ये सोचना कि हाँ, मेरे पास पैसे हैं तो मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं, तो वो जो जितनी आय इंसान के पास होती है, उतना ही उसके पास हेल्प मिलती है, उसे हेल्प मिलती है कि वह अपना काम सही से कर सके। अब जिस तरीके से हम एक परिवार या फिर एक व्यक्ति के आय के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से हम एक पूरे राष्ट्र, एक पूरे देश के बारे में भी और उसकी आय के बारे में भी बात कर सकते हैं और हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ये आ जाता है कि हम ये राष्ट्रीय आय क्यों निकालते हैं, इससे हमारी क्या ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप खुद इसके बारे में सोचें तो हमें क्यों चाहिए, आप खुद सोच के बताइए कि हमें क्यों चाहिए होगी राष्ट्रीय आय, हमें क्यों निकालने की ज़रूरत है। हमें ये राष्ट्रीय आय इसलिए निकालने की ज़रूरत है क्योंकि पहला, हमें ये पता चलता है कि हमारा जो राष्ट्र है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या वो और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कैपेबल है, क्या वो कमा सकता है और पैसे। क्योंकि अगर राष्ट्र में आय बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है जो उस राष्ट्र के लोग होंगे उनकी भी आय ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, उनको भी ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, उस राष्ट्र में ज़्यादा चीज़ें आ रही होंगी, बन रही होगी और लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे होंगे। इसके बारे में और विस्तार से हम इस पूरे आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि अगर मुझे राष्ट्रीय आय पता चल गई तो इसका मतलब मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे राष्ट्र में, मेरे देश में जितने भी छोटे छोटे राष्ट्र हैं, जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उनमें से किससे कितनी ज़्यादा मुझे आय आ रही है, किसमें मुझे ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो राष्ट्र है वो भी आगे बढ़ सके और बाकी के राष्ट्रों की तरह मुझे ज़्यादा फायदा दे सके। राष्ट्रीय आय से हमें ये भी पता चलता है कि जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें से किस क्षेत्र से हमें ज़्यादा आय मिल प्राप्त हो रही है, किस क्षेत्र में हमें ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, ताकि उस क्षेत्र के लोग भी अपनी आय ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके और वो क्षेत्र भी हमें आर्थिक दान प्रदान कर सकें। और जिस तरीके से एक देश की, एक राष्ट्र की आर्थिक स्थिति होती है, उस तरीके की ही नीतियाँ उधर बनाई जाती हैं, ताकि उस देश का जो राष्ट्रीय आय है, जो इनकम है, वो और ज़्यादा बढ़ाई जा सके और उधर के लोगों को ज़्यादा कामकाज मिल सके। तो राष्ट्रीय आय अगर हम देखें तो क्या होती है। राष्ट्रीय आय को हम इंग्लिश में नेशनल इनकम बोलते हैं। अब ये जो नेशनल इनकम होती है, ये क्या होती है, ये जो एक अर्थव्यवस्था है, एक इकॉनमी है, उसकी जितनी भी चीज़ें उस इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रही है, उत्पादित हो रही हैं, उन चीज़ों का योगदान होता है, उन चीज़ों की गणना होती है। इस चीज़ में जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें केवल वस्तुएं ही नहीं, सेवाएं भी इंक्लूडेड होती हैं, सेवाएं भी आती है। और जो दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली बात है वो ये है कि हम इसमें उन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो अंतिम वस्तुएँ होती हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है वो वस्तुएं जो हमें एग्जैक्टली हमें खरीदनी है, हम उसे खरीद के आगे और कुछ बनाने नहीं वाले हैं, उन्हें हम बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। अब ये अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? ये अंतिम वस्तुएं हो सकती हैं जैसे कि अगर मैंने कोई खेलने का सामान खरीदा, कोई कैरम बोर्ड खरीदा, तो वो कैरम बोर्ड मैं अपने लिए खरीद रही हूँ, वो कैरम बोर्ड मुझे आगे कहीं यूज़ नहीं करना, किसी और को नहीं देना, या फिर उस कैरम बोर्ड को यूज़ करके मुझे कोई और आगे चीज़ नहीं बनानी, तो वो जो कैरम बोर्ड है वो अंतिम वस्तु है। अब जैसे केचप की बॉटल है, अब ये मेरी अंतिम वस्तु है, क्यों? क्योंकि मुझे इसे यूज़ करके कुछ और नहीं खरीदना, तो जो केचप की बॉटल होगी चाहे वो किसी भी कंपनी की हो वो मेरी अंतिम वस्तु होगी। उसी तरीके से सेवाएं होती हैं, सेवाएं मेरे हिसाब से आप सबको पता होंगी कि क्या होती हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जो इंग्लिश में बोले तो इनटैंजिबल होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेवाएं। अब इन वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, मतलब जिनको हम पैसे में तोल सकते हैं, जिनके हम पैसे दे सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को शामिल किया जा सकता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम पैसे में नहीं काउंट कर सकते हैं, जिसका एक उदाहरण ये है कि अगर हमारी मम्मी हमारे घर पे कुछ काम कर रही हैं, वो खाना बना रही हैं, वो घर में काम कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों के हम उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए जो उनका काम होगा, उनकी जो सर्विस होगी, उनकी जो सेवा होगी, वो हम हमारे आर्थिक आय में, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही काम हम किसी मेड से करवाएं, किसी बाई से करवाएं या किसी और से करवाएं, हम उसे इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस इंसान को वो काम करने के पैसे दे रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जिनका कोई मौद्रिक मूल्य होता है। तो इस डेफिनेशन में जो दो चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है वो ये है, एक तो मौद्रिक मूल्य होना चाहिए, दूसरा अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के बारे में हम बात करते हैं। अब ये जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करी जाती है, ये एक निर्धारित समय में की जाती है, मतलब कि एक साल में एक राष्ट्र ने कितनी राष्ट्रीय आय बनाई, या फिर दो साल में कितनी बनाई, कुछ महीनों में कितनी बनाई, तो हर एक राष्ट्र में, हर एक देश में, हर एक कंट्री में ये डिपेंड करता है कि वो लोग कितना टाइम पीरियड लेते हैं। जनरली या ज़्यादातर या आम तौर पर लोग एक साल का पीरियड लेते हैं, और एक साल में ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि एक राष्ट्र ने कितनी नेशनल इनकम बनाई। अब इसके बहुत तरीके होते हैं जिसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इसमें, वो ये है कि राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होता है, ना कि देश के व्यक्तियों की आय का। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय आय हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते कि जितने भी व्यक्ति हैं उनकी सारी आय को प्लस कर दो या जोड़ दो तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हम राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं? जितने भी देश में, हमारे देश में जितने भी उत्पादन हुए हैं, जितने भी तरीके से उत्पादन हुए हैं वस्तुओं का और सेवाओं का, उन सबको ऐड किया जाता है, उन सब की गणना की जाती है, ना कि उस देश में रहने वाले लोगों की आय की गणना की जाती है। ये हमारा राष्ट्रीय आय का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम लोगों की आय को इंक्लूड नहीं करते, लोगों की आय को नहीं गिनते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक देश में कितनी चीज़ें बनी, कितनी चीज़ें उत्पादित हुई, और मुझे किन किन चीज़ों को काउंट करना है? तो हम उन चीज़ों को काउंट करते हैं जो खुद संयुक्त प्रयास से, मतलब खुद इंडिविजुअली कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, कोई चीज़ बना रही है, जो अंतिम वस्तु है या अंतिम सेवा है, वो कोई मूल्य प्रदान करती है, उसकी कोई आर्थिक मूल्य होता है, उन्हीं मूल्यों को हम राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। तो ये जो जितनी भी साधन होते हैं, इनको, इनके जो सेवाएँ करती है, ये जो सेवा हमें प्रदान करती है, उसका पुरस्कार दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम किसी धरती पर, किसी एक लैंड पे हम कुछ बना रहे हैं, तो उस लैंड का कोई लगान होता है, हम कोई हमने कोई पूंजी लगाई, हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी, तो उसके ऊपर भी हमें कुछ ब्याज मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे इन सेवाओं को पुरस्कार मिलता है। तो ये जितने भी पुरस्कार हैं, ये सारे के सारे किस रूप में हैं? आर्थिक मूल्य के रूप में हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारे राष्ट्रीय आय में काउंट होती हैं। तो ये जितने भी साधन हैं, उनको जो भी भुगतान मिल रहा है, वो उसी से मिल रहा है, क्योंकि उन जो साधन थे, उन्होंने हमारे राष्ट्र में कोई चीज़ बनाने में हेल्प करी, हमारी सहायता करी। तो ऑलमोस्ट लगभग ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ये लैंड भी तो, लैंड को हम दे रहे हैं, हम लगान दे रहे हैं, हम अपनी पूंजी को ब्याज दे रहे हैं, और साथ ही में जो लोग उधर काम कर रहे हैं हम उनको सैलरी भी दे रहे हैं, जिनकी वो फैक्ट्री है उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है, और जो उसने पहले पैसा लगाया उस पर उसको ब्याज भी मिल रहा है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमने जितना भी एक राष्ट्र में भुगतान किया, हमें जितना भी एक भुगतान मिला, वो उस राष्ट्र में जितनी भी साधन प्रोड्यूस हुए, जितने भी उत्पादन हुए, उसके बिल्कुल बराबर होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक देश में जब सभी साधन मिलकर एक वित्त वर्ष में, मतलब एक वर्ष में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक वर्ष में जब वो लोग कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो वो कुछ आय प्रदान कर रहे हैं, और उसी आय का योग हमारा राष्ट्रीय आय होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो राष्ट्रीय आय होती है ये दो तरीके की होती है, एक होती है जो हम घरेलू साधन से कमाते हैं, दूसरी होती है जो हम विदेशों से प्राप्त करते हैं। जो घरेलू साधन से कमाते हैं उसको हम बोलते हैं घरेलू साधन आय, और जो विदेशों से कमाते हैं या विदेशों से जो प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं शुद्ध साधन आय। अब इन दोनों में सिर्फ जैसे ये नाम है वही इनका डिफरेंस है। घरेलू साधन आय का मतलब है हमने जो भी पैसे कमाए, हमने जो भी आय कमाई, वो सारा हमारा राष्ट्र के भीतर, राष्ट्र के अंदर ही कमाया गया, बनाया गया। विदेशों से जो आया, जो शुद्ध साधन आए हैं, वो हमने विदेशों में कुछ निवेश किया था, हमने विदेशों में कुछ चीज़ खरीद रखी थी, हमने कुछ चीज़ वहाँ पे एक्सपोर्ट करी। मुझे लगता है आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब पता होगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हम जब कोई चीज़ वहाँ भेजते हैं, और इम्पोर्ट का मतलब होता है हम वो जब कोई चीज़ वहाँ से मंगाते हैं। खैर वापस आते हैं, जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, हमने कोई चीज़ वहाँ पे निवेश करी तो हमें उस पर कुछ ब्याज मिला, हमने कोई उधर चीज़ खरीद रखी है तो हमें उस पर कुछ फ़ायदा हुआ, ये सब चीज़ें भी हमारे कई बार राष्ट्र आय में काउंट की जाती है। लेकिन जब हम ये विदेशों से काउंट करते हैं, जब विदेशों की कंट्रियों में, विदेशों में हम ये चीज़ें निवेश करते हैं और वहाँ से हमें ये आय मिलती है, तो हम उसे बोलते हैं शुद्ध साधन आय। और जो हम घरेलू अपने देश के भीतर कोई भी सामान बना रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, तो वो होती है हमारी घरेलू साधन आय। तो हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमारी विदेशी और घरेलू ये दोनों आय डिफरेंट होती है, उसी तरीके से ये जो राष्ट्र आय होती है इसके कई अनेक रूप होते हैं, और इसकी कुछ अनेक वैज्ञानिक नाम भी दे रखे हैं, और इनके कुछ अलग अलग उपयोगिताएं भी होती हैं। इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और वो भी 12th क्लास में। अभी आपको सिर्फ ये नाम जानने की ज़रूरत है, ये अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग चीज़ें इनमें इंक्लूड की जाती है। लेकिन जो हमें सबसे ज़रूरी बात ये जानने की है कि हम अपनी जब भी राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हम घरेलू उत्पादित सामान के लिए निकालते हैं, और इसी वजह से हम जो आय निकालते हैं उसे बोलते हैं घरेलू साधन आय। ये आय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमें हमारे देश के बारे में ही देखना है कि हमारे देश में कितनी आय बनी, कितनी आय प्रोड्यूस हुई, कितनी चीज़ें बनी, तो हम यही घरेलू साधन आय के इस्तेमाल से पता करते हैं। तो इसीलिए हम जब भी टीवी में भी अगर आप देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये घरेलू साधन आय ही सबसे पहले बताई जाती है, उसके बाद कोई और तरीके की आय बताई जाती है। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ये राष्ट्रीय आय निकालते हैं तब हम लोगों की, जितने लोग उस राष्ट्र में रह रहे हैं, उसकी आय की गणना नहीं करते हैं। तो हम किसकी गणना करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो भी हमारे उत्पादन के साधन हैं, हम उससे जो भी अंतिम वस्तु प्रोड्यूस होती है, उससे जो अंतिम वस्तु बनती है, हम उसकी गणना करते हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है? काफ़ी ऐसे हमारे अर्थशास्त्री हैं जो ये मानते हैं कि हमें एक और चीज़ निकालने की ज़रूरत है जिसका नाम है प्रति व्यक्ति आय। अब ये क्या होती है, आप अगर नाम से ही समझेंगे तो प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति की आय, ये जो आय होती है ये हर एक व्यक्ति की आय को और पूरी जनसंख्या को ध्यान में रखती है। क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसके अंदर हम जनगणना को और जनसंख्या को नहीं लेते हैं, तो इस वजह से अगर कोई भी परिवर्तन होता है जनसंख्या में तो हमें ये नहीं पता कि क्या हमारे देश में सभी जो लोग हैं वो कोई पैसे कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं, उनकी आय कितनी है, और जो हमारा जो राष्ट्रीय आय हमें दिखाई दे रही है क्या वो बिल्कुल सही है, या फिर वो जो राष्ट्रीय आय है वो कुछ ही लोगों के हिस्से में आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो जनसंख्या को भी ध्यान में रखती है, तो इस वजह से जो हमारा राष्ट्रीय आय होता है वो भी निकालना आसान हो जाता है और यह विकास का एक अत्यधिक उपयुक्त माप बन जाता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रति व्यक्ति आय हम निकालें कैसे। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमारी राष्ट्रीय आय जितनी भी है उसको हमें जनसंख्या से विभाजित कर देना है, मतलब उसको डिवाइड कर देना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब जो भारत में ये जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना कौन करता है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हम जो लोग थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास इतना काम नहीं था, और उनके पास सामने जो ज़्यादा चुनौती थी वो ये थी कि कैसे हमारी जो राष्ट्र है उसको वापस उठाना है, कैसे उसको वापस पटरी पे लाना है। तो इस वजह से जो बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने राष्ट्र आय की गणना शुरू करी थी, जो सबसे पहले इंसान थे वो थे श्री दादा भाई नारोजी, जिन्होंने 1868 में ये काम करने की कोशिश करी थी। आप अगर ये टाइम नोट करेंगे तो ये हमारी आज़ादी से पहले का समय है। तो आज़ादी से पहले ही उन्होंने कोशिश करी थी कि वो हमारे राष्ट्र की जो राष्ट्र आय है उसकी गणना करें। उसके बाद काफ़ी सारे और लोग हैं जिन्होंने अपना अपने अपने तरीके से विभिन्न विभिन्न तरीके से अपने अनुमान के हिसाब से राष्ट्रीय आय बताई थी, लेकिन इन लोगों की में जो राष्ट्रीय आय इन्होंने बताई थी उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इनके पास पूरा का पूरा जो भी आधार थे, जो भी उपयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ थी, वो इनके पास पूरी नहीं थी। तो इस वजह से जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली उसके बाद श्री पीसी महालनोबिस ने अगस्त 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई जो हमारे पूरे देश की राष्ट्रीय आय की गिनती करती है। इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट 1951 में दी थी और आखिरी रिपोर्ट 1955 में दी थी। इसी वजह से जो ये राष्ट्रीय आय हमारे पूरे देश में निकलती है इसका काम केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर CSO को सौंप दिया गया, जो 1955 में बनी थी। और ये उस साल के बाद से हर साल हमारे देश में राष्ट्र आय की जितनी भी गणना है वो यही समिति करती है। अब अगर आप जब मैंने आपको चैप्टर पहले स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र आय हमें ये भी बताने में हेल्प करती है कि कौन से क्षेत्र से हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या फिर कौन सा क्षेत्र हमें ज़्यादा आय प्रदान कर रहा है। तो इस वजह से जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब जितने भी हम लोग काम करते हैं आसपास वो किसी ना किसी एक क्षेत्र में बटे हुए होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सेवाएं प्रदान करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अंतिम सामान बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खेतीबाड़ी का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी सरकार है और जो जितने भी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये जो लोग एक तरीके का काम करते हैं, एक तरीके की चीज़ें प्रदान करते हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। इसके अलग अलग मापदंड भी होते हैं। अब इनको जब बांटा गया तो ये कितने क्षेत्र बने? ये हमारे 3 क्षेत्र बने। इसमें जो सबसे पहला हमारा क्षेत्र है वो है प्राथमिक क्षेत्र। अब अगर आप इसका नाम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब ये हमारा सबसे पहला क्षेत्र होता है और ये हमारे बाकी के 2 क्षेत्रों में हेल्प करता है, बाकी के दोनों क्षेत्रों को ये हेल्प करता है। अब प्राथमिक क्षेत्र में आता क्या है? जब हम अपने आसपास का वातावरण या अपने प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ उत्पन्न करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें क्या आ सकता है, तो इसका एग्जाम्पल के लिए एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं, वो है कपास की खेती। कपास को बोलते हैं कॉटन। अब कॉटन को बनाने के लिए, कॉटन को उत्पादित करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें सूरज की किरणें चाहिए, हमें कीटाणुनाशक चाहिए, हमें कॉटन के बीज चाहिए, हमें वर्षा चाहिए और हमें जलवायु चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सबको मिलाकर हमने एक कॉटन बनाया, कॉटन का प्लांट या फिर कपास हमने बनाया। फिर वो जाकर आगे जैसे जैसे भी उसका प्रोसीजर होता है वो आगे काम किया जाता है, लेकिन जो सबसे पहले हमने काम किया वो ये किया कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो आपस में मेलजोल करके कुछ एक नई चीज़ बनाती है। जो ऐसी चीज़ें होती हैं उन सबको हम प्राथमिक क्षेत्र में लाते हैं। अब इसी को समझने के लिए हम दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो है दूध निकालने का काम। अब जो दूध निकाला जा रहा है वो कैसे निकाला जा रहा है? वो गाय से निकाला जा रहा है। जो गाय है वो आसपास की चीज़ें खाती है, प्राकृतिक चीज़ें खाती है, उसके अंदर अपने आप ही कुछ ऐसी बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जिससे वो दूध बनाती है, और फिर हम वो दूध निकालते हैं जो हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और आगे की चीज़ें बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये दूध बना, ये प्राकृतिक उत्पाद से बना और ये प्राकृतिक चीज़ों के मेल मिलाप से बना। तो इस तरीके की चीज़ें जिन्हें बनाने के लिए हम प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में डालते हैं, और जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के लोग होते हैं। अब मैंने ये जो दोनों एग्जाम्पल दिए, ये ज़्यादातर मैंने कृषि से दिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। अब सहायक क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र हमारे द्वितीय क्षेत्र यानी जो दूसरा क्षेत्र है उसके गतिविधियों में, उसके कामकाज में मदद करता है। अब द्वितीय क्षेत्र में वो गतिविधियाँ आती हैं या वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमने कोई सामान प्राथमिक क्षेत्र से लिया, उसको बड़े बड़े प्रौद्योगिकी में, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में, मशीन्स में डाला और फिर हमने कुछ अंतिम वस्तु बनाई। अब इसको समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने पहले वाले प्राथमिक क्षेत्र में कपास का एग्जाम्पल लिया था कि किसान ने मेहनत करके कपास उगाया। अब वो कपास जो उगाने वाला प्रक्रिया थी वो आई प्राथमिक क्षेत्र में। अब वो उस किसान ने क्या किया, वो कपास किसी और एक बड़ी कंपनी में गया, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया, वहाँ पर उस कपास से धागे बनाए गए, फिर उससे कपड़ा बनाया गया जो फिर आगे चलकर एक शर्ट या फिर कोई चीज़ बनकर हमारे सामने आया और लोगों ने उसे खरीदा। तो ये जो दूसरा वाला प्रक्रिया है इसके अंदर हम वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं जब हम कोई प्राथमिक क्षेत्र से चीज़ लेकर उसको प्रोसेस करके, उस पर काम करके कोई नया चीज़ बना रहे हैं जो हमारी अंतिम वस्तु के रूप में बाहर निकलती है। ये जो प्रक्रिया है ये किसी भी कारखाने में भी हो सकती है, किसी कार्यशाला में भी हो सकती है या किसी घर में भी हो सकती है। जैसे मैंने कपास का एग्जाम्पल लिया तो ये एक कार्यशाला में हुई। अब कोई कारखाना होगा, कारखाने में हमने कोई प्राथमिक क्षेत्र से चीज़ मंगाई, जैसे मटर हो गए या प्याज हो गए या फिर टमाटर हो गए, तो इन सब को हमने एक कारखाने में रखा, उन पे कुछ फिर जो भी इंडस्ट्री वाले लोग थे उनको, उन्होंने अपने हिसाब से उस कारखाने से वो चीज़ें निकाली, अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करी और फिर उन्होंने कुछ और चीज़ बना दी। तो ये सब होती है हमारी, जितनी भी ये प्रक्रिया होती है सारी की सारी हमारी द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। क्या आप इस क्षेत्र में कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हैं? अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं एक दो एग्जाम्पल और दूंगी ताकि आपका ये जो द्वितीय क्षेत्र है ये क्लियर हो जाए। अब प्राथमिक क्षेत्र से हमने गन्ना मंगाया और उस गन्ने को यूज़ करके हमने चीनी और गुड़ बनाया। अब वो जो गन्ने के इस्तेमाल से हमने पूरा प्रोसेस किया और चीनी और गुड़ अलग अलग बनाया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस में आया? द्वितीय क्षेत्र में आया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये क्षेत्र है वो अलग अलग तरीके के उद्योगों से जुड़ा है, तो इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अभी तक हमने दो क्षेत्र करे, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। अब हमारी एक तीसरी क्षेत्र भी होता है, तीसरा क्षेत्र भी होता है। ये जो तीसरा क्षेत्र होता है इसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं, और ये जो क्षेत्र है ये बाकी के दोनों क्षेत्रों से बहुत ही ज़्यादा विभिन्न होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे जानने वाली है कि जो ये तीसरा क्षेत्र है ये बाकी के दोनों क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के बढ़ने में और इन दोनों क्षेत्रों के विकास में भी मदद करता है। ये जो गतिविधि होती है, ये जो क्षेत्र होता है, ये किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं करती, किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, बल्कि ये उस वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है।